गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिश्चागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भीप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेहं स्वन्दुभिररिन्दम वाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा हे शत्रु संहारक तुम यहाँ पर आए यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है तुम्हारा कल्याण हो तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे तात्पर्य जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है जिससे वह मन भरकर अपने इच्छाओं को पूरा कर सकता है किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा या श्री भगवान से प्राप्त होती है जो प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाहि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं उनका एक लक्ष्य होता है परंतु हे कुरुनंदन जो दृढ़ संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता रहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा रहता है। वह किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्म की परवाह नहीं करता। राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य देह मिलती है, वह परिवार, राष्ट्रीयता, रीति रिवाज से बंधा जाता है। सब कुछ भगवान की माया द्वारा मिलता है। इस प्रकार जीव देहात्म बुद्धि में आकर अपनी बुद्धि का उपयोग अपने इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है। अनुवाद दोहराइएगा। हे शत्रु संहारक, तुम यहां पर आए यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। राजा पुरंजन जब पृथ्वी भर भ्रमण कर रहे होते हैं, अनेक जगहों पर जाते हैं, लेकिन कहीं भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आखिर वो एक ऐसे शहर में आते हैं जो कि बहुत सुंदर है और जिसका वर्णन पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। और धीरे से आगे चलकर राजा पुरंजन एक सुंदर स्त्री को देखते हैं जिसके साथ में कई नौकर चाकर हैं और उन नौकरों के भी कई नौकर हैं, हजारों की संख्या में। और ये स्त्री के प्रति आकर्षित होकर राजा पुरंजन पूछताछ करने की इच्छा रखते हैं। वो स्त्री भी राजा पुरंजन के प्रति आकर्षित हो जाती है और यह स्त्री उत्तर दे रही है और कह रही है कि हे राजा, जो आपकी सारी इच्छाएं हैं मैं मेरे मित्रों के सहित पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तात्पर्य में हम पढ़ चुके हैं कि राजा पुरंजन जीव या आत्मा का प्रतीक है। पुरंजन मतलब जो इस पुरा या शहर में, इस देह में जो निवास करता है, जो जन या जो व्यक्ति इस देह के भीतर निवास करता है उसको पुरंजन कहते हैं। कौन है जो इस शरीर में निवास करता है? देहिनो अस्मिन यथा देहे। तो देह में निवास करने वाला देहिनः, देही, देह और देही, तो आत्मा देही है क्योंकि देह के भीतर निवास करता है। इसलिए ये देही को या आत्मा को पुरंजन कहा गया है। आत्मा इस शरीर में रहकर शरीर का और शरीर के माध्यम से इस भौतिक प्रकृति का भोग करने का प्रयास करती है, इसलिए इसका नाम पुरंजन है। तो राजा पुरंजन की कथा ये इस भौतिक ब्रह्मांड में बंधे हुए बद्ध जीव की कथा है। लेकिन नारद मुनि राजा प्राचीन भरिषत को ऐसे कथा सुना रहे हैं मानो कि सचमुच ऐसी कोई घटना हुई है, कोई ऐसे राजा थे जिनका नाम था पुरंजन इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे हम कहानी सुन रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि ये कथा वास्तव में स्वयं राजा प्राचीन भरिषत की है और स्वयं हम सब की कथा है। राजा प्राचीन भविष्यत नहीं केवल, लेकिन हमारी कथा। हम इतने करोड़ों जन्मों से यहाँ इस भौतिक ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण के दौरान केवल हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हम भी राजा पुरंजन हैं। और ये जो स्त्री है ये है बुद्धि, पुरंजन है आत्मा और स्त्री है बुद्धि। बुद्धि मन के साथ में रहता है हमेशा, और मन के साथ में 10 इंद्रियां रहती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 इंद्रियां जिनसे हम कर्म कर सकते हैं और 5 इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं सारे ब्रह्मांड का। इस प्रकार से 10 इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी हैं मन और मन के स्वामी बुद्धि। अर्थात ये जो महिला है ये बुद्धि है, उसके साथ में 10 नौकर या सहायक जो कि ये 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों के साथ में हर एक इंद्रिय के या हर एक नौकर के हजारों नौकर हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंद्रिय के हजारों इच्छाएं हैं, हजारों इच्छाएं होती हैं हमारे मन में, हमें ये करना है वो करना है। इसलिए सारे जो नौकर चाकर हैं हजारों की संख्या में हो जाते हैं। और 5 फणों वाला एक सांप है, ये कौन है? ये है प्राणवायु, पंच प्राण। शरीर के भीतर एक सूक्ष्म वायु घूमती रहती है जिसको प्राण कहते हैं, और ये प्राण भी 5 प्रकार के होते हैं। वैसे 10 प्रकार के होते हैं लेकिन प्रमुख प्राण जो है वो 5 होते हैं, जैसे कि अपान, वयान, समान, उदान, प्राण इत्यादि। और ये प्राण वायु 5 प्रकार के शरीर के अलग अलग भागों में होते हैं और वहाँ पर शरीर के अलग अलग कार्यों का निर्देशन करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे कि एक प्राण वायु पचन का काम देखता है, एक प्राण वायु और कोई काम करता है शरीर में, सांस लेने का काम करता है। तो ये 5 प्राण वायु वो उस 5 फणों वाले सांप के बराबर है जो कि उसकी रक्षा करता है वो स्त्री की अर्थात बुद्धि की। जब देहांत हो जाता है तो प्राण सारे सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर जाता है, लेकिन जब तक प्राण शरीर में है तब तक जीव देह में रह सकता है। जब प्राण चले जाता है तो फिर देही को अर्थात आत्मा को देह छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए साधारण भाषा में भी कहते हैं प्राण त्यागने का समय, मृत्यु को कहते हैं प्राण त्यागते समय। प्राण मतलब क्या है? ये सूक्ष्म वायु है। तो इस प्रकार से बुद्धि जीव की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मदद करती है। बुद्धि का ये काम होता है कैसे मार्ग निकालना, कैसे करना, क्या करना। मन, इसके भीतर सारी इच्छाएं रहती हैं, इच्छाओं का भंडार है, जो भी अनादि काल से हजारों करोड़ों जन्मों से हमारी इच्छाएं हुई हैं वो सब अभी भी मन में भरे पड़े हुए हैं। जो हमने शेर के शरीर में इच्छाएं रखी थी, चूहे के शरीर में जब हम थे जो हमारी इच्छाएं थी, पूर्व मनुष्य जन्मों में जो हमारी इच्छाएं थी, जब कभी हम देवता थे, हो सकता है कोई इंद्र था, कोई ब्रह्मा जी था, कोई वायुदेव था, जो भी इच्छाएं इतने अनादि काल से इस भौतिक ब्रह्मांड में रही हैं ये सब मन के अंदर है। इस प्रकार से मन इन सारे इच्छाओं का एक भंडार है। केवल थोड़ी इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और थोड़ी अंदर दबकर रह जाती हैं। कभी कभी ये दबी हुई इच्छाएं भी अचानक प्रकट हो जाती हैं, जैसे कि स्वप्न में। स्वप्न में हम देखते हैं कई ऐसी चीजें, हम देखते हैं, अनुभव करते हैं जो शायद हमारे जीते जागते समय हमने अनुभव नहीं किया है। लेकिन क्यों आता है? क्योंकि हमने कभी तो भूतकाल में इन चीजों का अनुभव अवश्य किया हुआ है। कभी हम देखते हैं स्वप्न में कि हम उड़ रहे हैं, इस जन्म में तो हमने कभी शायद हम हवाई जहाज में भी नहीं बैठे होंगे, तो उड़ने की बात कहां से आती है मन में, ये स्वप्न कहां से आता है। शायद हमने किसी पक्षी को देखा होगा, हवाई जहाज को देखा होगा, या खुद हम कभी उड़े होंगे जब हम पक्षी के शरीर में थे। हम 84 लाख योनि भ्रमण करके आए हैं ना इस मनुष्य योनि में, तो कभी हम भी पक्षी हुए थे। पद्म पुराण में बताया जाता है कि पक्षियों की 10 लाख योनियां होती हैं, पक्षिणाम दशलक्षणम, तो 10 लाख पक्षी की योनियों में से हमने कितने जन्म बिताए होंगे उड़ते 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 उड़ते। इतने सारे उड़ने की इच्छा जो है वो हमारे मन में भरी पड़ी है। इसलिए आजकल भी लोग जब कविता लिखते हैं तो ये पक्षियों के बारे में हमेशा लिखते हैं, पंछी कैसे आकाश में उड़ रहे हैं। कविता कई बार ऐसे होते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि हाय जैसे पक्षी की तरह हम जैसे स्वतंत्र होते, आकाश में उड़ते, ऊपर जाते नीचे आते। ये इच्छा कहां से आती है, क्यों पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक बार पक्षी थे इसलिए वो इच्छा है अभी शरीर मन में। तो वो इच्छा कभी कभी प्रकट हो जाती है कविता के माध्यम से, कभी संगीत के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो भी सारी इच्छाएं हमारे अंदर हैं वो मन के भीतर है। मन तो केवल इच्छा कर सकता है, लेकिन इच्छा को कैसे पूर्ण करना इसका सामर्थ्य केवल बुद्धि को है। तो बुद्धि अपनी चाल चलाती है, ठीक है हे मन, हे बंधु, तुम्हारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, ठीक है मैं सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। बोलो क्या चाहिए। अच्छा पक्षी की तरह उड़ना है तो ठीक है, पंछी की तरह काम करते रहो और फिर अगले जन्म में मैं तुम्हें पक्षी का शरीर दिला दूंगा, फिर बहुत उड़ना, उड़ते रहना। इस तरह से बुद्धि और मन का सौभाग्य सहकारी होता है, कोऑपरेशन होता है। वैसे देखा जाए तो बुद्धि को मन को वश में करना चाहिए, लेकिन मन ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है इंद्र तृप्ति की वजह से। जो मन के भीतर इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं वो इतने प्रबल हो जाते हैं कि बुद्धि को वश में कर लेते हैं और बुद्धि को ही अपना नौकर बना देते हैं। कह रहे बुद्धि आओ इधर और ये मेरी इच्छा तृप्त करो, मार्ग निकालो कैसे इच्छा को पूर्ण किया जा सकता है। तो बुद्धि कहते हैं हाँ साहब, हाँ जी जो इच्छा है ठीक है। तो बुद्धि मार्ग निकाल देती है। जैसे कि कोई मान लो कोई बनिया होता है, वो पैसे के लेन देन में बहुत चतुर होता है लेकिन बाकी सब चीजों में शायद उसकी बुद्धि चलती नहीं हो, तो क्या करता है किसी बड़े इंजीनियर या PhD वालों को नौकरी में रख देता है, उसको 10,000 रुपया तनख्वाह देता है लेकिन उसके माध्यम से 30,000 कमा लेता है और उसको काम में लगा देता है। शायद उस तकनीकी काम के लिए वो व्यापारी योग्य न हो, उसके अंदर सामर्थ्य न हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को अपना नौकर बना देता है, उसको तनख्वाह दे देता है और उसके माध्यम से ऐसे काम कर देता है कि उसको बहुत ज्यादा मिल जाता है फल। तो इस प्रकार से मन भी बुद्धि को अपना नौकर बना देती है, नौकर बना के बुद्धि के माध्यम से अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। और इच्छाएं कितनी हैं, हजारों 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 इच्छाएं, कोई सीमा नहीं, अनगिनत इच्छाएं हमारे मन में। तो इसलिए बेचारे बुद्धि को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। फैक्ट्री का जो शिफ्ट होता है ना, जैसे सुबह का शिफ्ट होता है 8 घंटे का, दोपहर का, कभी शाम का, रात का, लेकिन बुद्धि एक ऐसी चीज है इसको दिन रात मन काम कराती है। केवल बेचारे बुद्धि को कब थोड़ी राहत मिल जाती है, नींद के समय। जब नींद हो जाती है तब बुद्धि को थोड़ा राहत मिल जाता है, लेकिन नींद के समय भी, स्वप्न के समय भी मन बुद्धि को तंग करती है, चलो यहां ले जाओ वहां ले जाओ। तो बुद्धि को भी तरकीब ढूंढनी पड़ती है स्वप्न में कैसे ये इच्छा को पूरी कर दें। जैसे कि जब स्वप्न में हम देखते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद की जाए, हम देखते हैं कि शेर हमारा पीछा कर रहा है, तो भागते भागते हैं तो मन में तो बड़ा डर हो जाता है, लेकिन मन बुद्धि को कहता है अभी क्या तरकीब निकालो, शेर पीछा कर रहा है। तो बुद्धि कहता है पेड़ पे चढ़ जाओ, पेड़ है। तो बुद्धि की सहायता से हम पेड़ में चढ़ जाते हैं, और जब शेर चला जाता है तो बुद्धि कहता है ठीक है अभी कोई खतरा नहीं है, उतर जाओ। तो इस प्रकार से स्वप्न के समय भी मन बुद्धि को छोड़ता नहीं है, बुद्धि को ओवर टाइम काम, और कोई तंखा नहीं, तंखा बिल्कुल नहीं, केवल काम करा लेना और तंखा नहीं देना सुबह से अंत तक। तो इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती उन्होंने प्रार्थना की है कि मैं तो नौकर चाकर बन गया हूं, किसका, मैं क्रोध का नौकर बन गया हूं, और जो काम है काम का भी मैं नौकर बन गया हूं, और ये ऐसे हैं कि मुझे रिटायरमेंट भी नहीं दे रहे हैं, इनके जीवन भर मैंने सेवा की, तनख्वाह तो इन्होंने नहीं दी वो दूसरी बात, लेकिन अभी मुझे नौकरी से रिटायरमेंट करने का समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, मैं सोच रहा हूं कि इंद्रियां मुझे थोड़ा कुछ राहत दें, और अभी इतनी तीव्रता से मुझे मेरे सामने डिमांड्स ऐसे मांगे प्रकट न करें, लेकिन ऐसा नहीं है, पीछा नहीं छोड़ रही है, हाथ धोकर अभी तक मेरे पीछे पड़े हैं, ये इच्छा पूर्ण करो, वो इच्छा है, ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये काम क्रोध इत्यादि इतने सारे इच्छाएं मेरे अंदर हैं, लेकिन ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। बहुत ही हृदय से सिंसियरली मैंने इनकी सेवा की जीवन भर, सोचा कि इतने साल सेवा करूंगा तो हो सकता है बुढ़ापे में मेरा संग छोड़ेंगे, मेरा पीछा छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बुढ़ापे में भी हमारी इच्छाएं हमको छोड़ती नहीं है। ये है शरीर की तकलीफ, बुद्धि थक जाती है, मन कभी नहीं थकता, मन में इंद्रियों की इच्छा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अकबर और बीरबल की एक कथा थी, वो जो आपने सुने, आपको सुनाया होगा कि बीरबल को अकबर कहते हैं कि वैसे बुढ़ापे में तो सब कुछ मन शांत हो जाता है, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं कम हो जाती हैं, तो इसीलिए हम बुढ़ापे तक आराम से रहेंगे तो फिर हम भगवान की भक्ति वगैरह सब कर सकते हैं। तो बीरबल ने कहा ऐसा नहीं है, बुढ़ापे तक सारी इच्छाएं रहती हैं। तो अकबर ने कहा मैं नहीं मानता। तो बीरबल ने कहा ठीक है मैं आपको समझाऊंगा। फिर एक बार उनके एक मंत्री वो बीमार पड़ गए, और इतने बीमार पड़ गए कि अपने मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, बस थोड़े समय की बात थी कि उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो अकबर ने कहा बीरबल से कि हमारे ये प्रिय मंत्री अभी मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, तो अभी जाकर कुछ दो बातें करना हमारे लिए उचित होगा। तो उस समय बीरबल ने हाँ मिलाया, बहुत ठीक, अच्छी बात है, हम जाके मिलेंगे अवश्य, लेकिन साथ साथ आपकी पुत्री को साथ में लेकर आइए। कि पुत्री नवयुवती थी, तो अकबर ने पूछा कि ये क्यों, काम तो हम दोनों का है मंत्री से। तो बीरबल ने कहा फिर भी मिलाओ, आप लेकर आओ। तो उस समय अकबर ने कहा ठीक है। तो तीनों गए उस मंत्री को देखने के लिए, और जैसे ही उन्होंने तीनों ने उस कमरे में प्रवेश किया तो जो वृद्ध मंत्री थे उनकी आंखें उनकी ओर गईं। अब उनके जो स्वामी हैं अर्थात सारे देश के बादशाह हैं, इतने बड़े राजा हैं अकबर, वो स्वयं उनके कमरे में आए हैं, लेकिन उस वृद्ध मंत्री की नजर राजा के ऊपर न जाकर उसकी नवयुवती पुत्री के ऊपर गए, और उस समय राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने अकबर की ओर देखा, दोनों समझ गए। और अकबर को बीरबल ने पूछा आपके सवाल का जवाब मिल गया, तो अकबर ने कहा मिल गया। इसका मतलब है अंतिम दम तक हमारे हृदय में जो इंद्र तृप्ति की इच्छाएं होती हैं वो खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि मन तो वही है, इच्छाएं तो मन में होती हैं, केवल शरीर कमजोर हो जाता है, इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर सकते, लेकिन मन तो भाग दौड़ कर सकता है ना, शरीर भाग दौड़ भले ना कर पाए, मन तो भाग दौड़ कर सकता है, इसलिए मन हमेशा सताता रहता है और बुद्धि को वश में करके पक्का उसको नौकर चाकर बना देता है और रिटायरमेंट नहीं देता उसको। जो भी हो काम करते रहो, मेरी सेवा में लगे रहो। उपनिषदों में बताया गया है कि हमारी इंद्रियां वो 5 घोड़ों के बराबर है, हमारा शरीर रथ के बराबर है, बुद्धि रथ के सारथी के बराबर है और जो मन है वो लगाम के बराबर है, जिससे कि सारथी घोड़ों को वश में रखता है और जो पैसेंजर है, जो गाड़ी में बैठा हुआ है, रथ में बैठा हुआ है, वो है आत्मा। तो जब मन कमजोर रहता है, अर्थात जब मन बुद्धि के वश में रहता है, अर्थात जब सारथी मजबूत होता है और बड़े अच्छे ढंग से लगाम को पकड़ के रखता है, तब मन बुद्धि के वश में आकर इंद्रियां भी वश में आ जाती हैं। अगर लगाम सख्ती से पकड़ा हुआ हो सारथी ने, तो घोड़े भी वश में आ जाते हैं। उस प्रकार से जब बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है, बुद्धि मन को वश में करती है और मन इंद्रियों को। जैसे कि सारथी अगर शक्तिशाली हो, कड़क हो, तो लगाम को कड़क पकड़ लेता है, फिर लगाम कड़क होने की वजह से घोड़े भी वश में आ जाते हैं। और इस प्रकार से रथ जो है या शरीर सही दिशा में आगे चलता है। लेकिन जब ऐसे नहीं होता, जब बुद्धि कमजोर हो जाता है और मन ही बुद्धि को वश में कर लेता है, अर्थात जब लगाम पकड़ने की शक्ति सारथी में नहीं होती, तो क्या होता है? लगाम ढीला पड़ने से एक घोड़ा इधर भागता है, दूसरा उधर, तीसरा उधर, चौथा उधर, पांचवा इधर। तो रथ की क्या दशा होगी? ठीक उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं। कान किधर मधुर ध्वनि की ओर जा रहा है, हमारी आंखें कोई सुंदर रूप की तरफ जा रही हैं, हमारी जिह्वा जो है कुछ स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। इस प्रकार से हमारी सारी इच्छाएं, सारी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में हमें खींच रही हैं, कोई राहत नहीं। और मन भी और इच्छाएं उनको प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ये लो ये लो। और फिर सारी इंद्रियां बुद्धि के ऊपर डिमांड कर रही, हड़ताल, हमारी मांगे पूर्ण करो, हमारी मांगे पूरी करो। और थोड़े दम तक बुद्धि, थोड़ी बहुत शक्ति अगर हो बुद्धि में, नहीं 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 देंगे, नहीं देंगे। आखिर जब जो धरना हड़ताल करते हैं, वे कांच पांच तोड़ने लगते हैं, तो फिर फैक्ट्री कारखाने की मैनेजमेंट कहते, ठीक है थोड़ा तनख्वाह बढ़ा देंगे, मांगे थोड़ी बहुत पूरी कर देंगे। फिर बातचीत होती है, अगर जो कर्मचारियों का संघ ज्यादा मजबूत हुआ तो मैनेजमेंट को दबा लेती है, हमें और तनख्वाह 1,000 रुपये बढ़ाओ। तो उसी प्रकार से मन और बुद्धि के बीच में हमेशा तनाव रहता है। लेकिन जो व्यक्ति बद्ध होता है इस संसार में, इंद्र तृप्ति में अटका हुआ रहता है, कोई मुकाबला ही नहीं होता, क्योंकि बुद्धि आसानी से हार जाती है। मन कहता है, चुटकी सुनाते है, तो बुद्धि, हाँ जी क्या चाहिए। इस प्रकार से अनादिकाल से, इतने करोड़ों जन्मों से ये इतिहास चल रहा है, बस और कोई बात नहीं। बुद्धि का काम ही है कि जीव की जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है उनको पूर्ण करना। इसलिए यहां पे ये महिला जो है ये बुद्धि की प्रतीक है और पुरंजन जीव के। और ये महिला कह रही है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, मेरे सारे सहायक और मित्रों के साथ में उपस्थित हूं आपके सामने, आदेश दीजिए क्या करना है आपके लिए। उसी प्रकार से जीव की इच्छा पूर्ण करने के लिए बुद्धि उपस्थित है। बताइए, इंद्र तृप्ति के नए नए मार्ग ढूंढ निकालने के लिए बुद्धि आतुर है और मन इच्छाओं का भंडार है, और मन के साथ में इतनी इंद्रियां और इंद्रियों के जो सहायक अर्थात इच्छाएं। तो इसलिए इस पथ पर न चलकर बुद्धि को चाहिए कि वो कृष्ण में लगे, कृष्ण में केंद्रित हो जाए। हम जैसे जब आरती करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं अर्चा विग्रह की, तो हमारे शरीर से भी हम सेवा करते हैं। जब आरती उतारते हैं तो हाथ भी घुमाना पड़ता है, शरीर को स्थिर रखना पड़ता है और मन को भी भगवान के ऊपर केंद्रित रखना पड़ता है। बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, पहले क्या, दूसरा क्या, कितनी बार करना है, बुद्धि का प्रयोग भी होता है। खास करके गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम उनके दर्शन का, उनके कथा को समझने का प्रयास करते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से उनकी उपासना कर रहे हैं। तो बुद्धि को मजबूत कैसे किया जा सकता है? जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम रसायन लेते हैं, च्यवनप्राश इत्यादि, तो उसी प्रकार से बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारथी को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें श्रवण और अध्ययन करना चाहिए, हमें गीता भागवत का पाठ रोज करना चाहिए। इससे हमारे बुद्धि को पोषण मिलता, एक पौष्टिकता मिलती है, और इस पोषण के बल पर जो बुद्धि है वो तेज होते हो जाती है और फिर मन को वश में कर लेती है। और जब मन कहता है मुझे ये करना है, मुझे यहां जाकर सड़क पे वो आइसक्रीम खाना है, तो बुद्धि कहता है नहीं, देखो हमने प्रभुपाद की किताब में पढ़ा है कि बाहर होटल में जाकर खाना नहीं है, ये कर्मी लोगों के हाथों का खाना नहीं चाहिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। मन कहता है नहीं नहीं लेकिन मुझे चाहिए। जैसे बच्चा होता है सड़क पर जाते हुए उसको हर चीज चाहिए, दुकान में जो भी देखता है हर चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर माता पिता को कभी डांटना पड़ता, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, रोता है, फिर शरारत करता है, बहुत हल्ला गुल्ला करता है। कभी कभी माता पिता अगर थोड़ा बहुत ठीक है भाई ले लो, कभी कभी बोलते नहीं। तो उसी प्रकार से मन एक बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे को चुप करा के बिठाना पड़ता है कभी कभी, क्यों, इसकी तो मांगे अनगिनत होती हैं, उसी प्रकार से मन की मांगे अनगिनत होती हैं, हर क्षण कुछ न कुछ मांगता है। तो बुद्धि जब शक्तिशाली हो जाती है, श्रवण से, अध्ययन से, आध्यात्मिक ज्ञान से बलवान हो जाती है, उस समय बुद्धि कह सकती है नहीं, नहीं मतलब नहीं, होटल में नहीं जाना, तो मन थोड़ा बहुत फिर रूठ जाता है, अरे क्या है नहीं है, उदास हो जाता है, अच्छा नहीं ये है वो, तो ठीक है मन जो भी हो तुम उदास हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन इच्छा पूर्ण नहीं होगी। ऐसे जब हम करेंगे तब हमारी बुद्धि मजबूत हो जाएगी और फिर मन वश में आ जाएगा। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जब हम मन को वश में कर लेते हैं तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र हो जाता है, और जब मन को हम वश में नहीं करते तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कई बार ऐसे दिखने में आता है, खास करके घर के भीतर, कभी कभी कोई व्यक्ति होते हैं बहुत घर में ऊंची आवाज में बोलते हैं, सबको वश में कर लेते हैं, हल्ला गुल्ला मचाकर सभी को दबा के रखते हैं, क्योंकि सभी लोग उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन अगर कोई उनके सामने दो बातें ऊंची आवाज में बोल देता है तो तुरंत ठंडे हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको ठंड करना हो तो आपको भी ऊंचे स्वर में बोलना पड़ता है, फिर वो ठंडे हो जाते हैं तुरंत, क्योंकि वो आदत नहीं है उनको सुनने की कि कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बोले। तो उसी प्रकार से मन को आदत नहीं है कि कोई उनके सामने खड़े होकर कुछ मजबूत कुछ बोले। अगर बुद्धि अचानक खड़े हो जाए कि नहीं मैं सामने खड़ा होऊंगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, तो अचानक मन को थोड़ा धक्का बैठ जाता है और फिर मन सोचने लगता, उदास हो जाता है, कभी उधर उधर बैठ के निराश होकर ऐसे बैठ जाता है। कोई बात नहीं, मन को कहना चाहिए कोई बात नहीं, रूठ जाओ, कुछ भी करो, इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा मान जाता है, और उसके लिए अच्छा है वास्तव में, अगर माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी कर दे बच्चे की तो बच्चा जो बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार से बुद्धि को चाहिए कि वो मन की हर इच्छा को पूर्ण न करे, धीरे धीरे जैसे उचित है वैसे मन की इच्छाओं को पूर्ण करे, भगवान के भक्ति में जो इच्छाएं हैं उनको उस दिशा में मन को ले जाए, और कृष्ण भावना भावित जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करे, या तो फिर कृष्ण भावना भावित पद्धति से मन की इच्छाओं को पूर्ण करे। जैसे कि स्वादिष्ट हमें कुछ व्यंजन खाना है तो कम से कम कृष्ण प्रसाद खाओ, बाहर होटल में जाकर कुछ मत खाओ। संगीत सुनने का शौक है तो फिल्मी गाने मत सुनो, भजन कीर्तन सुंदर सुंदर इतने हैं, मधुर हैं, वो सुनो। इस प्रकार से बुद्धि को चाहिए कि वो मन को समझाए, मनाए, कभी डांटे, जैसे कि ठीक उसी तरह जैसे माता पिता बच्चों को करते हैं, कभी डांटते हैं, कभी लाड प्यार करते हैं, कभी थप्पड़ मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गर्म कभी ठंडा। उसी प्रकार से बुद्धि को चाहिए कि वो मन के साथ बर्ताव करे, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी कड़क कभी नरम। इस प्रकार से बुद्धि को चाहिए कि वो मन को वश में करे। मन को बुद्धि का नौकर बनना चाहिए, न कि बुद्धि को मन का नौकर। और बुद्धि शक्तिशाली कैसे हो सकता है, जबकि ये श्रवण और कीर्तन और अध्ययन करे। इसलिए हमें चाहिए कि रोज भागवत क्लास हम सुने, रोज श्रीमद् भागवत और गीता हम पढ़ें, और ये जो दर्शन है इसके बारे में हम चिंतन मनन करते रहें। साथ साथ हमारी साधना भी आवश्यक है, जाप इत्यादि। ऐसा करने से हम इस पुरंजन राजे की तरह नहीं रहेंगे और हमारी बुद्धि इस स्त्री की तरह नहीं रहेगी। हमारी बुद्धि जो कि इस समय दूषित है वो शुद्ध हो जाएगी, हमारे मन को वश में कर लेगी, और फिर आत्मा का जो असली स्वरूप है वो प्रकट हो पाएगा। और वो क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, कि जीव कृष्ण का नित्यदास है, कृष्ण की सेवा करना ही उसका एकमात्र काम है। तो बुद्धि भी जीव को इस दिशा में सेवा करने में मदद करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि? प्रश्न ये है कि यहां पुरंजन जीव का प्रतीक है तो मन और जीव के बीच में संबंध क्या होता है। वास्तव में मूल जो पाप है वो आत्मा का है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा ने इच्छा नहीं की होती कि मुझे भगवान से स्वतंत्र होना है तो आत्मा को यहां भेजा क्यों जाता। मूल जो गलती है वो आत्मा की है, लेकिन इस वजह से जब आत्मा यहां आ जाती है उसे एक भौतिक देह मिलता है, बल्कि दो भौतिक देह मिलते हैं, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। सूक्ष्म देह है मन बुद्धि अहंकार, और स्थूल देह हमारे पंच महाभूतों का बना हुआ देह। मृत्यु के समय पंच महाभूतों का देह तो नष्ट हो जाता है लेकिन सूक्ष्म देह तो रह जाता है, और सूक्ष्म देह के अंदर ये सारी इच्छाएं रह जाती हैं। तो हालांकि मूल इच्छा आत्मा की थी, लेकिन इस भौतिक सृष्टि का स्पर्श करने से ये इच्छाएं इंद्र तृप्ति की उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि शरीर संबंध अपना स्थापित कर लेती है इस शरीर से, अपने आप को शरीर समझने बैठती है, प्रकृति समझने बैठती है। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। भागवत में बताया गया है कि जीव वास्तव में क्या है, सम्मोह में पड़ जाता है। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं, अपने आप को तीन गुणों से संबंधित समझता है कि मैं भी ये तीन गुणों का बना हुआ हूं, सत्व रजस तमस, जो कि भौतिक प्रकृति है। जीव में और भौतिक प्रकृति में वास्तव में कोई संबंध नहीं है, जीव तो भगवान के धाम का है, आध्यात्मिक है। ये तीन गुण भौतिक प्रकृति के हैं। परो अपि मनुते अनर्थम, जीव परा है, परशक्ति है, लेकिन मनुते अनर्थम वो सोचता है कि मैं ये तीन गुणों का बना हुआ हूं। अर्थात जब से जीव ये भौतिक संसार से शरीर से संबंध बनाए रखता है फिर मन का काम चालू, ये जो भौतिक मन का, फिर भौतिक मन के अंदर जैसे जैसे इच्छाएं शुरू हो जाती हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो फिर बुद्धि माध्यम से इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इंद्र तृप्ति का कार्य शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे इंद्र तृप्ति के कार्य में हम लग जाते हैं तो वो अनुभव वो संस्कार के रूप में हमारे चित्त में फंस जाती है। जैसे गीले मिट्टी में आप एक छाप डालिए पैर का, तो पैर का निशान रह जाता है। उसी प्रकार से हर एक इंद्र तृप्ति का कार्य जो है वो एक चिन्ह है, जो कि हमारे मन पर, हमारे चित्त पर एक संस्कार के रूप में बैठ जाता है और आगे कोई कार्य करने के लिए वो एक बीज बन जाता है। एक बार आपने इंद्र तृप्ति कर लिया तो वो इंद्र तृप्ति जो है एक संस्कार आपके चित्त में पैदा करेगा, मन में, जिससे कि आपको आगे चलकर वही कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। और जितना आप इंद्र तृप्ति करते रहेंगे उतने वही संस्कार आपके अंदर भरे पड़े रहेंगे, वो सब मन में जाते हैं, फिर आगे का काम सब मन देखता है। फिर मन के भीतर इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और जैसे हजारों हजारों जन्म बीतने लगते हैं उतने इच्छाओं का भंडार बढ़ता रहता है, मन की पूंजी बढ़ती रहती है, इच्छाओं की पूंजी। लेकिन जब आत्मा को शुद्ध किया जाता है, आत्मा को स्वप्न से जागृत किया जाता है, जगाया जाता है, तो उस समय फिर मन को शुद्ध किया जा सकता है। और कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? आत्मा आध्यात्मिक जगत से यहां गिर जाती है भौतिक जगत में, तो पहला शरीर कौन सा मिलता है? एक मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में फिर पाप पुण्य इत्यादि की बातें आती हैं, फिर अधोगति या ऊर्ध्वगति। पाप करते हैं, वो व्यक्ति पाप करता है तो अधोगति हो जाती है, और अगर पुण्य करता है तो ऊर्ध्वगति हो जाती है। लेकिन दोनों ही गतियां इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर ही हैं, उसको भौतिक संसार से मुक्त नहीं करेंगे, केवल भक्ति ही उसको मुक्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, जैसे अलग अलग तरह के कर्म कर सकता है व्यक्ति, फिर उसको शायद नीचे की योनि मिले, देवता की योनि मिले, लेकिन शुरुआत में मनुष्य योनि और अंत में भी मनुष्य योनि। यहां से